ओम शांति। आज के बाबा के सुबह के मधुर महावाक्य, बाबा ने यही हम बच्चों से प्रतिज्ञा कराई कि बच्चे प्रतिज्ञा करो और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। मैं समझती हूँ यहाँ सभी का एक बाबा के संग जुड़ गया है कि बाकी है? हाँ, जुड़ गया है, बाकी है, जुड़ गया है। तो फिर क्या तोड़ना है? जब जुड़ गया तो तोड़ना क्या रहा? अभी माया को तोड़ना है। बाबा ने जो आज की मुरली में बात बताई कि सबसे पहले हमारा अधिक से अधिक संग किसके साथ रहा? अपनी ही देह के साथ रहा, और देह के साथ संग रहा इसीलिए देह अभिमान बहुत आ गया, और जहां देह अभिमान आया तो अनेक प्रकार के कर्म हमारे विकर्म बनते गए, दुख का अनुभव करते गए। देह अभिमान आया तो और विकार भी आ गए, है ना? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके संग में हम आधा कल्प जिए, है ना? इसीलिए बाबा कहते हैं अब इन सब का संग तोड़ो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कहा जाता है कि काम विकार मनुष्य को सताता है, अनेक प्रकार की मनोवृत्तियों को विकृत कर देता है, दृष्टि वृत्ति हमारी विकृत हो जाती है। इसीलिए कहा काम विकार सताता है मनुष्य को, फिर क्रोध जलाता है। काम सताता, क्रोध जलाता है। क्रोध कर लेंगे फिर बाद में पश्चाताप करते रहेंगे तो जलते हैं ना, तो क्रोध जलाता है। लोभ क्या करता है? लोभ भटकाता है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये होना चाहिए, तो उसके लिए भटकते हैं। हाँ, उसके पास ये चीज है, मेरे पास नहीं है, तो मन कितना भटकता है। तो लोभ भटकाता है। मोह, मोह क्या करता है? मोह फंसाता है। और देह अभिमान क्या करता है? देह अभिमान उल्टा लटकाता है। तो काम सताता, क्रोध जलाता, लोभ भटकाता, मोह फंसाता, और देह अभिमान उल्टा लटकाता है। इसीलिए बाबा कहे अब इन सब का संग तोड़ो। तो जोड़ेंगे किसके साथ? इन सब को तोड़ने के लिए जोड़ेंगे किसके साथ? तो बाबा ने जो कहा आज वरदान में, बिंदु रूप अपने को समझो। पहले तो हमारा स्वयं का स्वयं के साथ जोड़ना, अपनी वास्तविकता से जुड़ना। जब तक हम अपनी वास्तविकता से नहीं जुड़ते हैं तब तक बाबा से नहीं जुड़ सकते हैं। इसीलिए बाबा हमेशा कहते, बच्चे अपने को आत्म समझ कर मुझ बाप को याद करो। जब तक आत्मा ही नहीं समझा है, देहभान में रहे, चलो अहंकार तो छूट गया, अभिमान को भी छोड़ा, लेकिन देहभान तो है। तो देहभान है तब तक भी हम आत्मा नहीं समझ सकते हैं, और आत्मा ही नहीं समझेंगे तो बाप के साथ कैसे जुड़ेंगे? इसलिए अपनी वास्तविकता से अपने आप को जोड़ना, अर्थात उस वास्तविकता में स्वयं को स्थित करना। जब देह भान भी हमारा समाप्त होगा तो आत्मा समझना सहज हो जाएगा। मेहनत ही तो सारी यह है। बाबा ने कई मुरलियों में कहा, आदि का पाठ सो अंत का पाठ। आदि का पाठ भी पहले दिन आए बाबा के घर में तो आत्मा का परिचय मिला, तो अंतिम पाठ भी कौन सा? आत्मा का। मैं आत्मा हूं इस स्मृति में रह करके शरीर छूटे तभी तो कर्मातीत स्थिति या संपूर्ण स्थिति होगी। तो इसीलिए बाबा कहे, स्वयं को ये देह के भान में इतना जन्म रहे हैं तो उसकी स्मृति बहुत नेचुरल हो गई है, इसीलिए वहां से तोड़ना है। देह से टूटेगा तो देह के संबंधों से भी टूटेगा, अर्थात देह की दुनिया से टूटेगा। भावार्थ यही कि एक बेहद का वैराग्य तोड़ना माना। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने कही कि खुश रहो, आबाद रहो, न बिसरो न याद करो। अवेयरनेस में रहे, जागृति में रहे कि हाँ ये सब बाबा के बच्चे हैं। ये नहीं कि भई हम तो किसी को जानते ही नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं, बाबा के परिवार से भी कोई मतलब नहीं, सबसे किनारा करो, बस एक बाबा। नहीं, बाबा ने कहा न बिसरो, बिसरना भी नहीं है लेकिन याद भी नहीं करना है। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि बाबा को भी कई बार कई बच्चों के नाम याद नहीं रहते हैं। कितने बाबा के बच्चे, बाबा को थोड़ी सबके नाम याद रहेंगे। लेकिन बाबा ने यह भी बहुत सुंदर बात कही कि सर्विसेबल बच्चों को बाबा जरूर याद करता है। तो भावार्थ ये कि क्योंकि हम एक दैवी परिवार में है, ईश्वरीय परिवार में है, तो हम एक दूसरे के सहयोगी साथी जरूर है। तो बिसरना नहीं है लेकिन याद भी नहीं करना है। ऐसे नहीं कि हम उनके मोह में या उनके लगाव में आकर के लटक जाए, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इसलिए खुश रहना है, आबाद रहना है तो न बिसरो न याद करो। बैलेंस बहुत जरूरी है और ये ईश्वरीय परिवार में होने कारण, क्योंकि एक दूसरे के साथ हम कनेक्टेड है तो स्नेही सहयोगी जरूर है, लेकिन स्नेही सहयोगी होने के बावजूद भी हम न्यारे और प्यारे हैं, तब कहेंगे कि हां और संग तोड़ एक संग जोड़ा है। दूसरी बाबा ने जो बात आज कही विशेष कि और संग तोड़ एक संग जोड़ना है किसमें, तो बाबा ने कहा बच्चे मुरली के साथ अपने आप को जोड़ो। मुरली कभी मिस नहीं होनी चाहिए, है ना? मुरली मिस नहीं होनी चाहिए, मुरली से अपने आप को जोड़ना है। एक संग जो जोड़ना है तो एक मुरली संग जोड़ना है। हमारी दादियों को देखा कितना उनका मुरली से प्यार था और मुरली ही उनका जीवन था। मुरली ही हाथ में, दिन में कई बार मुरली का अध्ययन करते थे। तो इसी तरह हम भी बाबा की मुरली के संग अपने आप को जोड़े, क्योंकि तब व्यर्थ की बातों से हम मुक्त होंगे। टूटेगा कहां से? व्यर्थ और नेगेटिव से टूटना है अपने को, और व्यर्थ और नेगेटिव से तोड़ने के लिए मुरली जो सदा समर्थ बनाती है, शक्तिशाली बनाती है, उसके संग अपने आप को जोड़ना है। तो आज बाबा ने विभिन्न बातें मुरली के अंदर बताई, किस किस से तोड़ना है, किस किस से जोड़ना है, इनडायरेक्ट वे में। इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे मुरली कभी मिस नहीं करनी है। जिस दिन मुरली मिस करते हैं उस दिन अनुभव होता है कि कई प्रकार के व्यर्थ से मन अपने आप जुड़ने लगता है, न चाहते हुए भी व्यर्थ और नेगेटिव के तरफ चला जाता है। फिर महसूस होता है, अरे आज मुरली नहीं सुनी है ना, आज मुरली पढ़ी नहीं है ना। अभी कोरोना काल के कारण कई लोगों ने, हाँ ये तो एक बहुत सुंदर साइंस ने सुविधा हम बच्चों को दे दी कि ऑनलाइन मुरली सुन लेते हैं, लेकिन अभी इतने ऑनलाइन के अभ्यासी हो गए कि सब बंद होने के बाद, सब खुलने के बाद भी सेंटर, हम तो मधुबन की मुरली सुन रहे हैं ना, है ना, तो क्या हो गया, सेंटर जाना बंद हो गया, सब खुलने के बाद भी बंद हुआ या जाना चालू कर दिया या घर में ही सुन रहे हैं, मधुबन की मुरली सुन रहे हैं, क्या करते हैं। अच्छा जो कहते हैं सेंटर पर जाते हैं जरा हाथ तो खड़ा करो, अच्छा, और जो घर में सुन रहे हैं अभी भी वो हाथ खड़ा करो, घर में सुन रहे हैं। कई बहनें कहती है अभी पता नहीं भाई बहनों में आलस वलबेलापन ऐसा आ गया जो घर में सुनते हैं लेकिन सेंटर पर नहीं आ रहे हैं, है ना, ऐसा ये आलस वलबेलापन आ गया ना, क्योंकि घर में सुन, बाबा इसको कहते नेमीनाथ का मंदिर भी है, नेमीनाथ का मंदिर भी है ना, नियम प्रमाण सुन लेना है ना, बाबा की मुरली सुनना है तो स्नान किया नहीं किया, हम उठे ब्रश किया नहीं किया, सुन ले, चालू कर दिया ना मुरली, पीस ऑफ माइंड की हम सुन रहे, दादी की मुरली सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं। बाबा कहते हैं नहा धो करके फ्रेश होकर के जब मुरली सुनते हैं तो ये भी एक पवित्रता है, बिना नहाए धोए मुरली सुनना तो क्या कहेंगे, शुद्धि कहेंगे अशुद्धि कहेंगे, और अशुद्धि स्वरूप में अगर मुरली सुने तो कितनी जाएगी अंदर जाएगी, मुरली इतनी शुद्ध पवित्र और हम अशुद्ध अपवित्र, तो मुरली जाएगी अंदर, जाएगी या नहीं जाएगी, क्या कहते हैं, नहीं नहीं जाएगी। इसीलिए वो ताकत जो मिलनी चाहिए मुरली से वो नहीं मिलती है। तो जब ना धो करके फ्रेश हो करके जब सेंटर पर जाकर के कायदे सर मुरली सुनते हैं उससे ताकत मिलती है, एक एक महावाक्य के जैसे शक्ति अंदर में बढ़ती है, तो समर्थी आती है। लेकिन अगर हम नियम प्रमाण सुन रहे हैं लेकिन कायदे सर नहीं सुन रहे हैं तो उसकी ताकत कभी नहीं मिलती है, वो मुरली अंदर जाती नहीं तो अवस्था हमारी बनती नहीं है। इसीलिए सेंटर पर जब जा करके कायदे सर मुरली सुनते हैं माना हम अपने अंदर की ग्रहण शक्ति को विकसित करते हैं और बाबा की वो ताकत हमें प्राप्त होती है, मुरली की समर्थि हमारे अंदर आने लगती है। तो माया किसी भी तरीके से हमें हरा नहीं सकती है, नहीं तो आलस अलबेलापन और तीसरा है बहानेबाजी, है ना। अभी हम कहीं गए थे तो मुरली का क्लास और हमको क्लास कराना था, उसके बाद मुरली क्लास के बाद तो हम तो तैयार हो गए, तो कहा नहीं बहन जी 9 बजे मुरली क्लास है। मैंने कहा 9 बजे, तो कहा हाँ, क्योंकि अभी गांव से भी लोग आएंगे, सुबह को थोड़ा ठंडी भी है और जो है सभी को प्रॉब्लम भी होता है, कईयों को पानी नहीं आता है, कईयों को, तो पहले भी तो था ना ये सब, तो जो मधुबन की दिनचर्या है उस दिनचर्या में तो हमें रहना है कि नहीं रहना है। अब 9 बजे अगर मुरली क्लास होगी, बोले 9 से 10 मुरली क्लास होगी, 10 के बाद 11 बजे तक आपका क्लास हो, मैंने कहा सब काम पर कब जाएंगे फिर, कहा नहीं सबने छुट्टी ले लिया है, जो काम पर जाने वाले वो तो चले जाएंगे और बाकी तो सबने छुट्टी लिया है। गांव में है तो गांव के लोगों को कोई काम, हाँ खेती का काम होता है, अभी कोई काम नहीं है। सुबह 9 बजे मुरली क्लास हो रहा है तो क्या कहेंगे उसको, तो आलस, अलबेलापन और बहानाबाजी, तीनों हो जाता है। तो जब हमारी चाल में ढीलापन आ गया तो क्या होगा, धीरे 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 माया के परवश होना स्वाभाविक है। तो इसीलिए दूसरी बात, मुरली का संग जोड़ना है, बाकी सब संग तोड़ना है। अनेक प्रकार के संग है दुनिया के अंदर, भक्ति मार्ग का भी संग है, कई ऐसे भी है, हाँ रोज मुरली भी सुनो और भक्ति मार्ग के सत्संग में भी जाओ ताकि किसी को बुरा न लगे, इसलिए वहां भी चलते रहो। तो दो नाव में पैर हो जाता है ना फिर, तो इसीलिए बाबा कहे नहीं, एक संग जोड़ो, बाबा की मुरली ही अंदर चली जाए और कोई बातें, बाबा के कई मुरलियों में ये बात आती थी कि नॉवेल्स का संग, मुरली का संग नहीं होता तो किसका संग होता है, नॉवेल्स का संग होता है। दूसरा जैसे बाबा कहते बाइस्कोप का संग होता है ना, तो ये सब, और अभी तो हर एक के हाथ में बाइस्कोप हो गया है, क्या मालूम क्या देख रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है ना। तो कहने का भावार्थ कि ये संग जो माया ने दिया है ना, उसका फायदा भी है तो उसका नुकसान भी है। कि और संग में आजकल YouTube पर तो क्या नहीं आता है, हम बाबा के मुरली सुन रहे हैं, क्लास सुन रहे हैं, उसके बाद कहां से कहां पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे और संग तोड़ो, जो ये आज बाबा प्रतिज्ञा करवा रहे थे कि एक मुरली के संग ही रहो, बाकी सब संग तोड़ना है ना, क्योंकि ये सब हमें मन को भटकाने वाली बातें हैं, उसको साथ नहीं देना है। अगर उसके साथ में गए तो कहां चले जाएंगे, कहां पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता है। अच्छा, तीसरी बात, और किसका संग करना है और किसका तोड़ना है, तो बाबा ने कहा कि एक धर्म का संग करना है। हमारा ओरिजिनल धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म, और अभी हमको बाबा जो ले आए हैं ब्राह्मण धर्म में ले आए हैं, तो ब्राह्मण धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म। बाबा कहते हैं मैं तीन धर्म की स्थापना करता हूं, ब्राह्मण धर्म और देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म। तो जो सबसे ऊंचा धर्म है ब्राह्मणों का धर्म है। ब्राह्मणों का धर्म माना जिनकी धारणाएं बहुत श्रेष्ठ है, उन धारणाओं के संग में हमें रहना है। बाकी जो दुनिया की धारणाएं हैं वो अशुद्ध है, इसलिए उन संग तोड़ना है। बाबा ने हम बच्चों को जो धारणाएं दी है अमृत वेले से लेकर रात्रि तक, ब्रह्मा मुखो शावली हम है तो ब्रह्माचारी है। ब्रह्मा बाबा ने जो आचरण करके सिखाया वही हम बच्चों के आचरण में होना चाहिए। तो जो तामसिक आचरण था, तमोगुणी आचरण था, वो आचरण से अपने आप को तोड़ना है और श्रेष्ठ आचरण से अपने आप को जोड़ना है, श्रेष्ठ धारणा। हमारी अति श्रेष्ठ धारणा जो बाबा ने हमें अमृत वेले से लेकर रात्रि तक दी है, उस श्रेष्ठ धारणाओं में हमें अपने आप को रखना है। चाहे वो खान पान की धारणा हो, चाहे वह बाहर जैसे अनेक प्रकार के संग की धारणा हो कि कुसंग या बुरे संग, उन सब से अपने आप को बचा के रखना है, उन सब से तोड़ देना है। कई लोग सोचते हैं कि नहीं, बाबा का संग तो है ही है, बाकी दूसरों की सेवा करने के लिए उस संग में भी हमें जाना पड़ता है, रहना पड़ता है। लेकिन अगर हमारी धारणा श्रेष्ठ है तो वो संग हमें प्रभावित नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हमारी धारणा ही नहीं है कि भाई हमें शादी में जाना पड़ता है तो वहां खाना पड़ता है, अब खाना पड़ता है तो ये धारणा क्या रही, और ये धारणा हमें कहां ले जाएगी, है ना? जैसा अन्न वैसा मन। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, आप जाओ बोले शादियों में, जाओ पार्टी में, जाओ जहां जाना जरूरी लगता है जाओ, लेकिन अपनी धारणाओं को कॉम्प्रोमाइज नहीं करो कि खाना पड़ता है। अरे आप नहीं खाएंगे तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, है कि नहीं? बहुत सुंदर एक भाई ने अपना अनुभव सुनाया कि बहन जी, मैं बड़ी कंपनी में हूं और कंपनी में भी बहुत अच्छी मेरी पोस्ट है, लेकिन बाबा की धारणा जो है ना, मैं हमेशा फॉलो करता हूं। तो जब भी हमारी सारी बोर्ड मीटिंग होती है तो मीटिंगों में तो खाना पीना आदि सब कुछ होता है उनका, तो सारा रखते हैं, तो हम भी जाते हैं मीटिंग में तो जाना ही पड़ता है, तो मैं अपना टिफिन लेकर के जाता हूं। तो टिफिन लेकर के जाता हूं, वहां की चाय भी नहीं पीता हूं मैं अपना थर्मस लेके जाता हूं, अपना खाने का टिफिन लेके जाता हूं और वही खाता हूं पीता हूं, है ना? और उसके बाद जो है, एक बार मीटिंग में ऐसा हुआ कि किसी ने कुछ लाखों रुपए का गफला किया और सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ गया। हमने कहा फिर? तो कहा, जब मेरे ऊपर आ गया और मेरे पास कोई सबूत नहीं जो मैं सिद्ध करके बताऊं कि हम मैंने इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, तो बाबा को याद किया। तो जो मेन हमारा सीईओ था, जब उसने बात सुनी, सुनता रहा, बोले पहले तो सारी बात सुनता रहा, सारे मेरे ऊपर जैसे ये कर रहे थे, तो ईर्ष्यावश कहो या जिस भी वश कहो, है ना, तो कर रहे थे। मैं चुप था, मेरे पास कुछ सिद्ध करने का, और बाबा तो कहते हैं सत्य को सिद्ध नहीं किया जाता है, वो अब स्वयं में सिद्ध है। तो कहा, मैं बाबा को याद करता रहा, तो हमारा सीईओ जो था, सारी बात सुनने के बाद कहता है, ये भाई यहाँ का खाना नहीं खाता है, यहाँ की चाय नहीं पीता है, वो पैसा क्या खाएगा। देखो कैसे बचाया धारणाओं ने। कहा, बाबा ने ये धारणा जो दी है, ये धारणा ने मुझे इतना सेफ रखा और मुझे अपने आप को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि भाई मैंने ये गफले में मेरा कोई हाथ नहीं है, मुझे बोलना ही नहीं पड़ा। लेकिन बाबा कैसे बचाता है कि वो भाई कहता है, अरे ये यहाँ का खाना नहीं खाता है, सभी देखते हैं वो अपना टिफिन लेके आता है, आप लोग तो सब यहाँ आराम से खाते पीते सब कुछ हो, ये यहाँ की चाय नहीं पीता है, तो ये पैसा क्या खाएगा। अब बताओ धारणाओं ने क्या किया, जो समझते हैं कि नहीं, हमको शादियों में जाना पड़ता है, मीटिंग में जाना पड़ता है, तो खाना पड़ता है, तो कल को वो अपने आप को सिद्ध कर सकता था। अगर वो भाई भी अपनी धारणा में नहीं रहता था और खाता था तो कैसे सिद्ध करता था, और फिर क्या होता था, उसको कंपनी से निकालना ही पड़ता था, वो निकाल देते थे। तो कहा कि मुझे तो बोलना ही नहीं पड़ा और मेरे बदले में उसने ही बोल दिया, तो मेरी धारणाओं ने मुझे कैसे सुरक्षित रखा। तो इसीलिए जब हम एक धर्म की स्थापना करते हैं बाबा के साथ, तो उसके लिए हमारी श्रेष्ठ धारणा एक ऐसी होनी चाहिए। तो इसीलिए बाबा कहे, श्रेष्ठ धारणाओं से संग करो और जो कुसंग है या जो तामसिकता है उस संग से अपने आप को किनारा करो। सात्विक संग के साथ हमें अपने आप को जोड़ना है, ब्रह्माचारी बनना है। ब्रह्मा बाबा के हम मददगार बच्चे हैं, तो जब ब्रह्मा बाबा के मददगार बच्चे हैं तो ब्रह्मा बाबा ने जो आचरण करके सिखाया, भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा बाबा के लिए कहा जाता है कि बाबा के घर में कभी कोई पार्टी रखते थे और वहां पर तामसिक भोजन नहीं रखा जाता था, तो कहा जो सिंधी कम्युनिटी के लोग आते थे बाबा के घर में भी कई शादियां हुई कई हुआ तो बाबा तो सात्विक भोजन रखता था। तो कई लोग बाबा को हंसी मजाक में कहते थे कि बाबा आज पार्टी फीकी फीकी लगी, कुछ था ही नहीं, तामसिक खाना पीना कुछ था ही नहीं। तो बाबा हमेशा क्या कहते थे, आप लोगों के लिए मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। अज्ञान काल में बाबा के ये धारणाएं थी, बाबा के ये वाक्य थे कि आप लोग तो मुझे कागज की नोट देते हो, मैं तो आपको सच्चा हीरा देता हूं। आप लोगों के कारण, ये कागज की नोटों के कारण मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, है ना। कहने का भावार्थ बाबा का कितना सात्विक जीवन, और उसके बाद भी बाबा की जो प्रतिष्ठा थी समाज के अंदर वो कई कम नहीं थी, बहुत रिस्पेक्टेबल थे बाबा। अज्ञान काल में भी अपनी सात्विक जीवन और श्रेष्ठ धारणाओं के कारण, तो इसीलिए जितनी बाबा ने हम बच्चों की धारणाओं को श्रेष्ठ किया है और उन धारणाओं पर हम चलते हैं तो क्या हो जाता है, रिस्पेक्टेबल हो जाते समाज के अंदर भी, इज्जत लोग देना शुरू करते हैं। तो बाबा ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है तो उसके उन श्रेष्ठ धारणाओं का संग हमेशा करके रखना है। तो कई प्रकार की जो तामसिक बातें हैं, तामसिकता है दुनिया के अंदर, उन सब से अपने आप को सेफ रख सकेंगे, पावर आ जाएंगी, विल पावर आ जाएगी। तो इसीलिए बाबा कहे दुनिया में कोई छोटी मोटी धारणा भी करता है तो भी उसके अंदर कैसी पावर आ जाती है, विल पावर आती है कि नहीं आती है। तो इसी तरह बाबा कहे तुम बच्चों के अंदर तो इतनी श्रेष्ठ धारणाओं की विल पावर, तो कितना पावरफुल होना चाहिए। इसीलिए श्रेष्ठ धारणाओं का संग करे, एक धर्म का संग करे, और अधर्म यानी तामसिकता से अपने आप को तोड़ो। अच्छा, चौथी बात, और किसका संग करे, आज क्या मुरली में सुना, हाँ, और किसका संग करना चाहिए, हाँ? सच का संग करें, है ना। और बाबा ने कहा श्रीमत का संग करो, एक संग माना एक श्रीमत, एक श्रीमत के सूत्र में हम सभी बंधे हुए हैं, उस श्रीमत का संग हमेशा करते रहो। बाकी आज की दुनिया के अंदर पर मत, मन मत, अनेक मतों का संग छोड़ दो, एक श्रीमत के संग में अपने आप को ले चलो, क्योंकि तभी सेफ रहेंगे। इसीलिए बाबा कई बार मुरली में हम बच्चों को क्या कहते हैं, बच्चे पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत के प्रभाव में अपने आप को नहीं लाओ, क्योंकि ये गिराने वाले हैं। पर मत, पर दर्शन, पर चिंतन, ये क्या करता है, ये उन्नति की सीढ़ी नहीं है, ये गिराने की जो खाई है, नीचे गिराती है इंसान को। इसीलिए बाबा कहते बच्चे तुम सदा श्रेष्ठ मत के संग में रहो, यही बाबा का हाथ है। निराकार बाबा का हाथ कौन सा है, श्री मत रूपी हाथ है, ये हाथ को पकड़ करके चलेंगे तो कई प्रकार के बातों से अपने आप को सेफ रख सकेंगे। श्रीमत हमें हमेशा चढ़ती कला की ओर ही ले जाती है। श्रीमत पर चलते रहो तो कभी गिरने का अनुभव नहीं करेंगे, लेकिन श्रीमत का हाथ पकड़ करके चलेंगे तो कितने भी बड़े से बड़े पेपर आएंगे, लेकिन उन सब पेपरों में भी पास होना स्वाभाविक है ना। जैसे वो कहानी नहीं सुनाते हैं कि एक बार एक पिता अपने बच्चे को मेले में लेके गया घूमने के लिए, खूब जोर का तूफान आया। जब तूफान आया तो पिता ने बच्चे को कहा, मेरी अंगुली पकड़ ले। कहा, नहीं, आप मेरा हाथ पकड़ो। बच्चे ने कहा, आप मेरा हाथ पकड़ो। तो पिता ने कहा, बात एक ही है ना। कहा, नहीं, एक बात नहीं है, मेरे हाथ छोटे हैं, मेरे हाथ इस तूफान में फिसल सकते हैं और मैं छूट सकता हूं, लेकिन अगर आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तो चाहे कितना भी बड़ा तूफान हो, आप इतना कस के पकड़ेंगे जो मुझे छूटने नहीं देंगे। तो ऐसे बाबा की श्रीमत रूपी हाथ में अगर मैंने अपना हाथ रखा, बुद्धि का हाथ रखा, तो कितने भी बड़े से बड़े तूफान आएंगे, लेकिन उन तूफानों में भी हम कभी गिर नहीं सकते हैं, छूट नहीं सकते हैं। बाबा की श्रीमत हर तूफान का सामना करने के लिए हमें सक्षम कर देगा। हमारा हाथ तो छूट सकता है, लेकिन बाबा कभी भी हमें छोड़ने वाला नहीं। अगर बाबा के श्रीमत के हाथ में हमने अपने बुद्धि का हाथ दिया तो इसीलिए एक श्रीमत के संग में सदा रहो। जितना श्रीमत के, तो बड़े से बड़े तूफान को पार करने की हिम्मत आ जाएगी। इसलिए बाबा जो हमेशा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे हिम्मत है बच्चे मदद है खुदा, हिम्मत है बच्चे मदद है बाप। तो हिम्मत कौन सी? हर एक श्रीमत को एक्यूरेट पालन करने की या उस पर चलने की हिम्मत चाहिए, और जो ये हिम्मत रखता है उसके हर परिस्थिति में मददगार भगवान है ही है। भगवान उसको कभी छोड़ नहीं सकता है। लेकिन मैंने श्रीमत का हाथ पकड़ा है तो, अगर कोई मन मत या पर मत का हाथ पकड़ लिया, फिर तो वो तूफान में हमारी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकता है, भगवान भी नहीं कर सकता है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे आधा याद नहीं रखो, पूरा याद रखो। कई बार बच्चे जब मुसीबत में आ जाते हैं ना, चल रहे हैं परमत पर और मुसीबत आएंगी तो बाबा आप तो मददगार हो ही, तो बाबा कहे पूरा वाक्य याद रखो ना, हिम्मत है बच्चे मदद है बाप। हिम्मत रखो श्रीमत पर चलने की, लेकिन हिम्मत अगर श्रीमत पर चलने की नहीं है तो बाबा मददगार कैसे बनेगा? जिसकी मत पर चल रहे हैं वो मददगार बने? फलाने ने ऐसे कहा था, उसने ऐसे कहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया, तो फिर तो फेस करना पड़ेगा ना तूफानों का। तो इसीलिए हिम्मत ये चाहिए कि हर श्रीमत को एक्यूरेट हम पालन करें, हर श्रीमत के संग में हम रहे। जितना हर श्रीमत के संग में रहेंगे तो मन मत पर मत पर चिंतन पर दर इन सब से क्या हो जाएंगे, इन सब के प्रभाव से अपने आप को मुक्त करो, है ना। इसीलिए जो कल की मुरली बाबा की सुनी ना, तो उसमें भी क्या कहा, कई बच्चे रूठ जाते हैं। बाबा से नहीं रूठो, ब्राह्मणी से भी अगर रूठो, कोई बच्चों से भी रूठो, लेकिन बाबा से नहीं रूठो। अर्थात बाबा की श्रीमत पर चलते रहो, मुरली से कभी मुरली मिस नहीं करो। कल भी बाबा ने ये बात कही है कि नहीं। तो इसीलिए सदा सेफ रहने का तरीका है, एक श्रीमत का संग पकड़ो, बाकी सब संग छोड़ो। देहधारियों के मत पर मत अनेक दुनिया की मते, उसके संग में नहीं आओ, उस संग से तोड़ो, क्योंकि वो संग गिराने के निमित्त बनते हैं। श्रीमत ही हमें चढ़ाने के निमित्त बनती है। इसलिए कहा ना, जो श्रीमत पर चलता है तो चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस। तो श्रीमत हमें वैकुंठ रस चखाती है, और गिरे तो चकनाचूर। तो दुनिया की मत पर चलेंगे, गिरत्या इतने अनुभव होने के बाद भी अगर हम दुनिया की मत को ही महत्व देते रहेंगे, उसके मत पर चलते रहेंगे, तो क्या होगा? गिरते जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए श्रीमत का संग और परमत के संग को तोड़ो। और कौन सी बात बाबा ने कही? आज की मुरली बहुत गहन मुरली थी, बहुत अच्छी मुरली थी। जैसे जैसे हम मुरली सुबह पढ़ते रहे और सुनते रहे, तो लगा कि देखो बाबा ने आज जो एक्यूरेट कहा है कि प्रतिज्ञा करो, इन सब से हम जुड़े रहेंगे। ये एक संग जोड़ना है और बाकी संग तोड़ना है। पांचवी बात है, पांचवी बात बाबा ने कहा, सद्गुणों का संग करो और कमजोरी और अवगुणों का संग छोड़ो। सतयुग में हम जा रहे हैं, तो सतयुग में जाना है। हमारी महिमा में पहली बात यही आती है, सर्वगुण संपन्न, है ना, सोले कला संपूर्ण। तो सर्वगुण संपन्न, तो सद्गुणों का संग करना ही चाहिए। एक एक गुणों का संग करते जाए। यहां हिस्ट्री हॉल के बाहर लिखी है ना लिस्ट पूरी सद्गुणों की, कितने हैं? 36 है, है ना। और इसीलिए दुनिया में भी कहा जाता है 36 लक्षण, कहते हैं ना 36 लक्षण, कहते हैं ना, हाँ, 36 गुण जो है वो 36 लक्षण बन जाते हैं, वो हमारे लक्षण में आ जाते हैं। जैसे जैसे उन गुणों की धारणा करते जाते हैं, वो हमारे लक्षण बन जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे कि ये 36 गुणों का संग करो। कई लोग सोचते हैं एक बाबा का संग करना तो बोर हो जाते हैं फिर। अरे बाबा का खाली संग थोड़ी है, इतनी सारी चीजों का संग करने के लिए का एक संग माना। तो 36 गुणों का संग करेंगे तो बोर होगा कभी कोई? हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए सद्गुणों का संग और अवगुण और कमजोरियों के ऊपर सहजता से विजयी हो जाएंगे। अगर सद्गुणों का संग नहीं किया तो कमजोरी क्या होंगी? बार बार आती रहेगी, बार बार हमें अधीनता में ले आती रहेंगी, और उसी से हमारी स्थिति अवस्था सब बिगड़ती रहेगी। इसलिए सद्गुणों का संग करो तो सदा खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, है ना। अवगुणों का संग न चाहते हुए भी हो जाता है। इसलिए कई बार कई लोग कहते हैं मैं गुस्सा तो करना नहीं चाहता था लेकिन हो गया। या जैसे बाबा ने उस दिन के अव्यक्त मुरली में कहा, मैंने गुस्सा थोड़ी किया, थोड़ा रोब तो दिखाना पड़ता है ना, दुनिया में रहते तो थोड़ा रोब दिख, तो धीरे धीरे वो क्या करेगा फिर, रोब दिखाते दिखाते कहां गुस्से में पहुंच जाएंगे और क्रोध में आ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए जब अंतिम समय भी, कई बार कई लोग ये आलस्य अलबेलापन में आते हैं, छोटी सी बात है ना, वो तो ठीक हो जाएंगी, अंत तक तो ठीक हो जाएंगी, ऐसे करके छोड़ देते। लेकिन बाबा ने ये बताया है कि बच्चे ये छोटी सी चीज जो आज आपने छोड़ी है कि अंत तक ठीक हो जाएगी, लेकिन यही माया का आने का द्वार बन जाएगा। और अंतिम समय माया फुल फोर्स में जो आएगी वहां से आएगी। जो अंतिम पेपर, बाबा ने कहा ना कई बार कि ये यूनिवर्सिटी ऐसे है, अंतिम पेपर अनाउंस्ड है। दुनिया में तो पेपर लीक होते हैं, यहां तो पेपर भगवान ही लीक कर देता है कि अंतिम पेपर में कौन सा सवाल आना है, फिर भी बच्चे पास नहीं हो रहे हैं। कि बाबा ने ये पेपर लीक कर दिया है कि बच्चे लास्ट क्वेश्चन जो होगा, अंतिम समय का जो क्वेश्चन होगा, वो जहां आपकी कमजोरी होगी ना वहां से आएगा, और उस वही कमजोरी हमें फेल करेगी। इसलिए छोटी सी कमजोरी को भी देख करके ये मत सोचो इतना तो चलता है ना, नहीं, उसको चलाओ नहीं, क्योंकि वही अंतिम पेपर बनेगा आपके लिए। और वो कमजोरी अगर रहेगी तो वही हमें फेल करने के निमित्त बन जाएगा। इसीलिए बाबा कहे, उन कमजोरियों के ऊपर विजय पानी है तो वो सद्गुणों को धारण करो, उसके संग में रहो। जितना सद्गुणों के संग में रहेंगे तो कमजोरी के ऊपर आप ही विजयी हो जाएंगे, अवगुणों के ऊपर आप ही विजयी हो जाएंगे। और हमें दुनिया को दिखाना नहीं पड़ता है कि भाई रोब करेंगे तो ही काम होगा, ये करेंगे तो ही काम होगा। नहीं, आप प्यार से मधुरता से भी बहुत सुंदर कार्य कर सकते हैं, है ना। अथॉरिटी जरूर हो, लेकिन बाबा कहे अवगुणों के कमजोरियों के प्रभाव में नहीं चलो, ये हमें अधीन कर देंगे। और अधीनता में जब आ जाते हैं तो व्यक्ति अधिकारी नहीं बन सकता है। सद्गुण हमें अधिकारी बनाता है, अवगुण हमें अधीन करता है। इसलिए और संग तोड़, तो ये अधीनता वाले संग को तोड़ना है, और एक संग जोड़ना माना सद्गुणों का संग से जोड़ना है, क्योंकि उसी से हम संपूर्ण बनेंगे, है ना। और 111 में जा सकेंगे। और लास्ट में कौन सी बात बाबा ने कही, हाँ, नेगेटिव को भी पॉजिटिव में परिवर्तन करो, तो पॉजिटिव के संग में रहो, यानी जो बाबा कहते हैं सत्य के संग में। होसी भी सत का ना, आज गुरु नानक देव की पूरी महिमा बाबा ने रिपीट कर लिया, जो गुरु में ग्रंथ साहब में कहा हुआ है कि भाई परमात्मा की महिमा क्या है, उस महिमा को बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट की। तो एक सत के संग में रहना है, आदि भी सत, मध्य भी सत, और अंतिम सत्य में भी हम बाबा के संग हो। क्योंकि सत्य माना, जो बाबा ने सत्यता को डिफाइन किया है, सत्य माना सत्य और अविनाशी, वो सदा अविनाशी स्थिति हमारी बनाएगा। इसीलिए सत के संग में निरंतर अपने आप को रखना है। सत का संग जिसके पास है, माना सत है तो पावर है, असत में कभी पावर नहीं होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं एक झूठ 100 झूठ बुलवाता है, है ना। तो झूठ में पावर नहीं है, तभी तो 100 झूठ बोलेगा ना। और जितना झूठ बोलता जाएगा उतना पावर हीन होता जाएगा। और सत में जो पावर है वो हमें अचल अडोल रखता है। इसीलिए सत के संग में जोड़ना, और बाकी जो झूठे संबंध है या झूठ है उन सबको छोड़ना है, उन सबसे तोड़ना है। तो सत के संग में सदा रहना है। जितना सत के संग में रहेंगे तो सकारात्मकता हमारे अंदर स्वतः आती जाएगी, विश्व कल्याणकारी आप स्वतः बन जाएंगे, क्योंकि बाप हमारा विश्व कल्याणकारी है। तो इसीलिए एक सत के संग में स्वयं को जोड़ना है, और बाकी असत्यता से किनारा दूर हो जाना है। धीरे धीरे किनारा करते करते उस झूठ से बहुत दूर चले जाओ, क्योंकि लास्ट समय में ये सत्यता ही, सत्यता की शक्ति ही हमारी स्थिति को अचल अडोल बना सकती है। झूठ वाला कभी भी अचल अडोल नहीं रह सकता है, वो हिलता रहेगा, हर परिस्थिति रूपी पेपर में हिल जाएगा, है ना। लेकिन जो सत के संग में है तो सत्य स्वयं में सिद्ध है, सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो प्रकाश है, उस प्रकाश को कभी कोई ढक नहीं सकता है। जैसे कहा, कभी बादल आ जाते हैं सूर्य को ढक देता, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता है, बादल छटते ही सूर्य अपना प्रकाश दिखाई देता है। तो सत्य स्वयं में प्रकाशित है। इसीलिए सत्य के संग में जितना हम रहेंगे उतना हम भी सत्य स्वरूप अपना बनाते जाएंगे और हमारे अंदर वो अचल अडोल स्थिति स्वतः सहजता से बनती जाएगी। तो सब संग तोड़ एक संग जोड़ना अर्थात कौन सी बात बताई, छह बात बताई ना, याद है देह भान का संग तोड़ना है और मुरली का संग से जोड़ना है, फिर श्रीमत के संग से जोड़ना है, श्रेष्ठ धर्म में हम है तो उन श्रेष्ठ धारणा आचरण के साथ अपने आप को जोड़ना है और सद्गुणों के संग में अपने आप को रखना है और एक सत्यता के संग में जोड़ना है। तो छह बातों का संग करना है और बाकी संग तोड़ना है, ठीक है, ये एक से कनेक्टेड है, ठीक है ना। अच्छा, ओम शांति।
तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा।